ناظرین آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. نماز مغربین اور اس کے بعد ہم نے نماز ادا کی, اذان ہوئی, نماز ادا کی, اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. امید ہے کہ آپ نے بھی سب نے نماز ادا کر لی ہوگی مغربین کی. اس کے بعد میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم جو ٹاپک کا آغاز کریں گے وہ عید الفطر کے اور امام زمانہ کے حوالے سے ہم ٹاپک کا آغاز کریں گے کہ کس طرح امام ہم سے چاہتے ہیں, کیونکہ امام ہمارے زندہ ہیں, غیبت میں ہیں, اور وہ کس طرح اپنے فالوور سے چاہ رہے ہیں کہ وہ عید الفطر کا آغاز کرے اور کس طرح عید الفطر منائے. تو انشاءاللہ ہم اس حوالے سے آغا نصرت عباس بخاری صاحب سے بھی گفتگو کریں گے, کراچی سے وہ ہمیں جوائن کریں گے. اس سے پہلے میں برادر ضمیر عباس جعفری صاحب, ہم صلہ رحمی کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے اور مسلم ہاشم صاحب نے بھی کال کر کے اس کو سراہا کہ عید الفطر ایک ایسا موقع ہے جس موقع پہ ہمیں زیادہ سے زیادہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی, اور اگر بھول چوک سے آپ سے غلطی سے ہو گیا ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ ان سے ملیں, عید الفطر پہ انہیں مبارکباد پیش کریں. یعنی وہ جس طرح کہا جاتا ہے خدا پر توکل کریں, یعنی کہ دنیاوی جو ہیں وہ ان کو ہٹا کر.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. خود مولا کائنات کی وصیت میں سے ہے یہ کہ مولا کائنات کہتے ہیں کہ نماز اور روزوں سے زیادہ نبی نے فرمایا یہ چیز افضل ہے کہ دو مومنین کے بیچ میں صلح کو انجام دینا, یعنی کہ خود سے پہل کر کے اگر کوئی انسان کرے تو وہ بڑا ہوتا ہے. فارسی میں کہتے ہیں ایک شعر ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جو جھاڑ پھلدار ہوتا ہے, جس کے اندر پھل ہوتے ہیں, وہ جھکا ہوا ہوتا ہے, اور جس میں پھل نہیں ہوتے ہیں وہ ٹہنا اکڑا ہوا ہوتا ہے. یعنی کہ کوئی اگر انسان اگر جھک نہیں رہا ہے, یعنی کہ اس کے اندر پھل نہیں ہے, یعنی کہ اگر آپ دوسروں کے پاس جائیں گے, مومن کے پاس جائیں گے اور مومن کے قریب آئیں گے, پہلا سوال یہ کہ اہل بیت آپ سے خوش ہوں گے یا نہیں خوش ہوں گے. اہل بیت کہہ رہے ہیں, وصیت میں کہہ رہے ہیں کہ آپ صلہ رحمی کریں. تو سوال یہ, دیکھیں ایک امپورٹنٹ سوال جو میرے ذہن میں اس وقت آ رہا تھا وہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ عید گزرنے کے بعد میں اگر اپنے آپ سے یہ سوال کروں کہ آیا وقت کے امام جس طریقے سے عید منانی چاہیے تھی اس طریقے سے میرے عید منانے سے وقت کے امام خوش ہیں یا نہیں ہیں, یہ اگر میں اپنے آپ سے سوال کروں کہ آیا میں نے ویسی عید گزاری ہے جیسے امام چاہتے تھے, یا میں اپنے آپ سے سوال کروں کہ مجھے کیسی عید گزارنی چاہیے کہ وقت کے امام مجھ سے راضی ہو جائیں.
بالکل.
پھر اور یہ بھی بات ہوئی تھی کہ ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہو کہ اگر وقت کے امام کو اگر ہم دعوت کریں, جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے وقت کے امام ہمارے گھر میں آئیں, تو ہم گھر کا ماحول ایسا ہو کہ وقت کے امام کے شان کے مطابق ہو کہ وہ اگر ہمارے گھر میں آئے, اور ہمارے گھر میں ایسی چیزیں نہ ہوں, ایسا ماحول نہ ہو, حجاب کا ماحول, محرم نا محرم کا ماحول, دینی ماحول ہو تو امام کا, تو ہم امام کو انوائٹ کر سکتے ہیں. رشتہ داروں سے اپنے قرابت کے لیے, ان کے قریب آنے کے لیے بہترین موقع ہے کہ مثلا اپنی انا کو, اپنی ایگو کو اس کو سائیڈ میں ہٹائیں, کیونکہ ایگو شیطان کریٹ کرتا ہے, اور شیطان کی سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ اس کے پاس ایگو تھا.
بالکل.
عبادت بھی کرتا تھا, سب کرتا تھا, کہتا تھا کہ میں کیوں, اس کے اندر میں تھا. جہاں میں آ جائے سمجھ لینا کہ آپ جنگ, ہم جنگ جو ہے وہ ہارنے لگے ہیں, کیونکہ شیطان کے ہم پر حاوی ہو گیا ہے. تو بہترین چیز یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ سے سوال کریں کہ وقت کے امام کی غیبت میں ہم اور وقت کے امام کے ظہور کے منتظر ہیں ہم, تو کیسی عید منانا چاہیے کہ وقت کے امام کا دل خوش ہو اور وہ کہیں ہمیں کہ احسن کہ مثلا یہ میرا چاہنے والا ہے, اس نے ایسی عید منائی ہے جو میری تمنا کے, میری خواہشوں کے مطابق ہے. تو یہ سب سے بڑا جو ڈرائیونگ فیکٹر ہو سکتا ہے وہ وقت کے امام کا اور ان کی امت کا یہ کنیکشن اسٹرانگ ہو, اور عید کے درمیان جہاں پر امام کو آ کے انشاءاللہ امامت کرنی ہے اور امام کو آ کے پوری دنیا کے سامنے امامت کرنی ہے, عید کی ہم اس کے منتظر ہیں, اس وقت ہمیں زیادہ بھی اس چیز کا احساس ہو سکتا ہے کہ کیسے ہم اب تیار ہوں تاکہ وقت کے امام کے لیے ہم لوگ زیادہ سے زیادہ تیاری کر سکیں.
بالکل. انشاءاللہ نصرت بھائی بھی جو ہیں وہ ہمیں کراچی سے جوائن کریں گے, اور ہم اسے بھی ان سے گفتگو اس موضوع پہ کریں گے کہ جس طرح آپ نے ابھی فرمایا کہ کس طرح امام زمانہ ہم سے عید منوانا چاہ رہے ہیں. تو وہ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں, ان کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
جی آغا, امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اچھے طریقے سے جو ہے ایک جو سفر جو ہے عید الفطر کا وہ اچھے طریقے سے, آج جو پاکستان میں تیسرا دن تھا تو اس حوالے سے کچھ بتائیے گا.
بالکل. आजकल कब्रिस्तान भी है, बाकी होते हैं तो उनका लोग वहाँ पे भी अपने अशरफा अपने बुजुर्गों की कब्रों पर और उसके अलावा शोकदार की कब्रों पर कि हम भी खुद मरहूम जापानी गवर्नमेंट में गए। तो अलबत्ता सब एक्टिविटीज है, आज आखिरी दिन तक जाहिर है कल से ऑफिस से शुरू जाएगा, तो लोग कोशिश कर रहे थे भरपूर आज भी उससे फायदा उठा सकें।
अगर थोड़ा सा आप अगर लाउडली बोल सकें क्योंकि हमें आवाज़ जो है वो बहुत कम सुनाई दे रही है, तो
असल में मेरी आवाज आपकी आवाज भी थोड़ी सी आवाज स्लो है, तो मेरे ख्याल से नेटवर्क में प्रॉब्लम
जी मेरे ख्याल में अभी थोड़ा जो है वो आवाज़ सही तरीके से सुनाई दे रही है। अगर हम यहाँ पे आज गुफ्तगू कर रहे हैं ईद उल फितर में बड़े एक अहम मौजू की तरफ जो है नाज़रीन की हम तवज्जो दिलाना चाह रहे हैं कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम जो कि गैबत में हैं इस वक्त और हमारे जो है एतमाद के मुताबिक और हमारी जो रिसर्च है उसके मुताबिक के जिस तरह फुकहा भी कहते हैं कि हमारे आमाल जो हैं वो इमाम की बारगाह में पेश किए जाते हैं हर जुमा को और वो उनको देखते हैं अपने फॉलोअर्स के आमाल को, तो इमाम ज़माना किस तरह की ईद अपने फॉलोअर्स से मनवाना चाह रहे हैं, किस तरह वो चाहते हैं कि उनका एक जो शिया है शियान अली जो है वो किस तरह की ईद मनाएँ।
देखिए बात वही है कि मासूमीन हमेशा से चाहते थे कि ईद जो है यानी रिवॉर्ड है रमजान का, और ईद उसी तरह मनानी चाहिए जिसमें कोई ऐसा काम ना हो जो खुदा की रजा जिसमें शामिल ना
बिल्कुल
हो। सारे मासूमीन भी वैसे ही चाहते हैं कि इंसान हर वो अच्छा काम करे जिसमें खुदा की रजा शामिल रहे। जहां तक रही इमाम जमाना अजल्लाह तआला फरजहू शरीफ, तो देखें असल ईद तो यही है कि जब इमाम जहूर करेंगे, सारे इमाम गैबत के पर्दे में हैं, तो उनके बगैर हम किस तरह जाहिर है इन खुशियों को सही तरह सेलिब्रेट नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए असल इमामत नहीं है, हुकूमत नहीं है, दौलत नहीं है, और एक इमाम गैबत के पर्दे में है तो खुद भी मनाने वाले का भी दिल उदास है, क्योंकि जो असल वारिस है दीन का वो आपके दरमियान में जाहिरन मौजूद नहीं है। तो जाहिर दिल हमेशा इसलिए कहा जाता है ईद उल फितर में दुआए नुतबा पढ़नी चाहिए। क्यों पढ़नी चाहिए? क्योंकि इसलिए कि हम उस खुशी के दिन भी हम ये नुतबा कर रहे हैं, हम ये एतराज करें कि कहाँ है वो जो करबला का बदला लेगा, कहाँ है वो जो कि दुनिया को असल इंसाफ से भर देगा, कहाँ है वो जो सबब है जमीन और आसमान के मुतसिल होने का। ये ईद के दिन की एतराज करना असल इसलिए है कि ताकि हम इस चीज को खुद भी यकीन करें और यकीन करवाएं कि असल ईद तभी है कि जब उसका जहूर होगा, जब उसकी हुकूमत होगी, जब उसकी इसमें लोग खुशियां मनाएंगे। तो उनकी गैबत में भी देखें ईद वैसे ही करनी चाहिए कि जब हम उनके जहूर में ईद करेंगे। अब मिसाल के तौर पर जो खुशियां आज हम करते हैं अपने घरों में अपने एक्टिविटीज में हमारे यहाँ दावतें हो रही हैं, क्या हम अपनी दावतों में इमाम को मजबूर कर सकते हैं? या
बिल्कुल
हमारे घरों की दावतें, या हम कहीं जा रहे हैं, या हम जो एंजॉयमेंट कर रहे हैं तफरी है एंटरटेनमेंट है, क्या हम समझते हैं कि हमारा इमाम उस इस सारी चीजों में हमारे साथ शामिल हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो अगर नहीं हो सकता तो मतलब है कि हम उनकी रजा के लिए उनकी खुशियों के लिए नहीं कर रहे, बल्कि हम अपनी अफगानी ख्वाहिशात जिसका कल भी जिक्र किया उसी लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जब आप ईद की खास तौर पर मतलब कोई सेलिब्रेशन कर रहे हैं, आप ये देखें कि क्या आप इमाम को दावत दे रहे हैं, कि आप
बिल्कुल
पूरी दुनिया को दावत दे रहे हैं, रिश्तेदारों को दे रहे हैं, दोस्तों को दे रहे हैं, दावत दे रहे हैं। तो वो जिसका आप इंतजार कर रहे हैं 1150 साल से, जिसके लिए कायनात रुकी हुई है सब कुछ, तो क्या आप उनके लिए कुछ कर रहे हैं? कि आप उनको दावत दे रहे हैं कि आपका दिल उदास है ईद के दिन? तो
बिल्कुल
अगर नहीं है तो हमें इन तरफ तवज्जो देनी चाहिए। नहीं हम खुशियां मना रहे हैं, मासूमीन नहीं कल खुशियां ना मनाए, लेकिन क्या हमारी जिस में कहीं हमारे दिल में कहीं हमारी आंखों में कहीं हमारे नमी है, कहीं कुछ गम छुपा हुआ पाया जाता है कि मैं मुस्कुरा तो रहा हूँ लेकिन कुछ गम है मेरे अंदर कि जिसको मैं जाहिर नहीं करना चाह रहा, वो यही है कि क्योंकि मेरा इमाम नहीं है, मेरे दरमियान में नहीं है। और जाहिर है कि मेरा इमाम नहीं है तो दुनिया में गुलमो खत्म हो रहा है, परेशानी है, कितने लोग यतीम हो गए इस रमजान के अंदर, कितने लोग घर बर्बाद हो गए, कितनों के मुल्क बर्बाद हो गए, कितने शहर जल रहे हैं, ये जब तक मेरे अंदर एहसास नहीं होगा, मैं जब तक इंसान बनकर नहीं सोच सकता, तो मैं किस तरह खुशियां अपनी मनाकर किसको राजी करना चाहता हूँ। देखिए, एक बैक ऑफ द माइंड, एक शऊर के अंदर ये बात हर मुसलमान खासतौर पर जो इंतजार कर रहा है उसके अंदर होनी चाहिए।
जी नुसरत भाई, यानी आपकी बात को अगर जी आपकी बात को मैं अगर इस तरीके से पेश करूं कि हम चाहे जो भी जगह, जैसे भी हम हैं, चाहे वो ईद हो या एक नॉर्मल डे हो, चाहे माह रमज़ान हो, हम मुंतज़िर हैं। और जब हम इंतज़ार कर रहे हैं वक्त के इमाम का, तो हर सिचुएशन में हम लोगों को उसी तरीके से होना चाहिए जैसे कि एक मुंतज़िर को, कोई जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है उस चीज़ के इंतज़ार करने वाले को जो एक स्टेट में होना चाहिए, वो स्टेट, उसके वो स्टेट ऑफ माइंड या उसका उस जोन में होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो ईद का दिन ही क्यों ना हो। यानी ईद का दिन में खुशी तो है, लेकिन साथ में उसे ये एहसास भी होना चाहिए कि मैं मुंतज़िर हूँ वक्त के इमाम का, जिसे आके पूरी दुनिया में अदल व इंसाफ को कायम करना चाहिए। तो ये रिश्ता उसका इमाम के साथ, एक शिया का रिश्ता इमाम के साथ, ईद के दिन और ज़्यादा उसको बेचैनी और बेताबी होना चाहिए।
जी बिल्कुल सही कह रहे हैं जमीर आपके, बिल्कुल। ये जब तक बेताबी नहीं होगी, जब तक ये तड़प नहीं होगी, तो हम उस तरफ बढ़ भी तो नहीं सकते, हम अपनी जिम्मेदारी को समझ नहीं सकते, हमें इंतजार में करना क्या चाहिए, हमारे वजायफ क्या हो, जब हम उस तरफ जा रहे जब तक तड़प नहीं होगी, जब तक किसी जगह जब तक किसी चीज की तशनगी नहीं पाई जाती, तो आदमी अपनी प्यास नहीं बुझाता। जब तशना होगा तो अपनी प्यास को बुझाएगा। हम असल में हम जब खुशियां मिल लेते हैं, मिल रहे हैं, इधर कर रहे हैं, उधर जा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो पी रहे हैं, लेकिन कहीं पर कोई जगह कोई लम्हा ऐसा है कि हम थोड़े गम ज्यादा है कि अभी असल बंदा है ही नहीं हमारे दरमियान में, होता है ना घर के अंदर
गैबत में। जी
आपका कोई बड़ा बुजुर्ग ना आए
जी,
और सब आप आ जाए, किसी वजह से मरीज हो जाए या कुछ हादसा पेश आ जाए या नहीं, आप कहते हैं यहाँ सब है लेकिन हमारा पूरी खुशी पूरी नहीं हो पाई क्योंकि दादा नहीं आए या मतलब वालिद साहब नहीं पहुंचे, सब बच्चे हैं लेकिन मतलब एक अपनी एक चीज अधूरी रह गई।
जी
तो ये एहसास बिल्कुल ऐसा ही है, वो हम सब जो है इमाम के औलाद में हैं, हम सब जो है वो इमाम के जो है वो खादिम है, हमने उनके लिए जो है वो सारे काम करने हैं। क्या कहीं
जी यानी नुसरत भाई,
तो हमें
जी हमारा क्लेम ये है कि हमारी जिंदगियां इमाम के लिए है, हमारे पास जो कुछ है सब इमाम के लिए है, यानी हम उस इमाम के मुंतजिर हैं जिसे दुनिया में अदल व इंसाफ को कायम करना है। और हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे वो मादी है चाहे रूहानी है, ये जमाने में जो कुछ सब इमाम की वजह से है, तो हम उसके मुंतजिर हैं। और ये ईद भी उसी हकीकत में जब वो आएंगे तो वाकई ईद होगी, वो खुशी का लम्हा जो मोमिन के लिए होगा वो हकीकी लम्हा तब होगा जब इमाम का जहूर होना है। तो हम लोगों को लेकिन ये तड़प जब होगी नुसरत भाई, ये हम लोगों को सबसे पहले अपनी खुद की ज़ात से शुरू करना होगा। और तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, यानी हम इमाम आके क्या करने वाले हैं और हमें क्या करना चाहिए ईद के लिए, हमारी प्रेपरेशन में हमें खुद क्या करना चाहिए, ये सवाल हमारे जहन के अंदर उभरना चाहिए घड़ी घड़ी।
जी बिल्कुल, देखें हाँ, जब तक ये सवाल नहीं उठेंगे तब तक हम उनके जवाब की तलाश में नहीं जाएंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें जिसको ना किताबों के जरिए समझाया जा सकता है ना आप किसी को कुछ कह सकते हैं, ये फीलिंग एहसास खुद इंसान को, मार्फत भी लोगों को है, जानते भी हैं, सब कुछ है, लेकिन बस एक तज़क्कुर की जरूरत है, एक तवज्जो की जरूरत है, जो कि हम कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह आप मेहनत कर रहे हैं, आप रमजान में घूम रहे हैं या इस तरह आम दिनों के अंदर भी इस सिलसिले को मरल हर रोज नहीं तो हफ्ते में जारी रखें, ताकि तज़क्कुर जो है वो देता रहे। देखिये पूरी दुनिया इस टाइम कोई किसी तरफ बुला रहा है, कोई पैसे की तरफ है, कोई इकोनॉमिक्स की तरफ है, कोई गाड़ियों की तरफ है, कोई मोबाइलों की तरफ बुला रहा है, मतलब कोई कपड़ों के इश्तेहारात हैं, तो दुनिया इस मादियत में घूमे जा रही है, तो कहीं तो इस दुनिया में कोई ऐसी सदा कोई ऐसी आवाज हो हफ्ते के अंदर कम अज कम एक दिन कि जो सिर्फ इमाम की तरफ बुलाए बस, ताकि कहीं तो कोई हो कि हाँ यार कहीं से तो चलो आवाज आ रही है, इस तरफ तो इंसान को तस्कीन पहुंचे जा रहा है। इतना मादियत है तो उसके अंदर कहीं थोड़ी बहुत हमें मानवीयत डालनी पड़ेगी ताकि हम अपनी इस्लाह कर सकें और इंतजार की तरफ जा सकें।
यानी ये वेस्टर्न मटेरियलिज्म ने चाहे हम लोग चाहे जो भी मजहब कहें कि हम मानते हैं, लेकिन हम लोग वो मटेरियलिज्म के अंदर अगर डूबे रहेंगे तो हम वो मानवियत को हम लोग एहसास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो मटेरियलिज्म के अंदर दबे हुए हैं तो वो रूह आवाज़ नहीं दे पाती है, क्योंकि वो मटेरियलिज्म के मलबों के अंदर दबी हुई है।
जी बिल्कुल कह रहे हैं। देखेंगे हमें इस मादियत से अपने आप को दूर, देखें छोड़ तो नहीं सकते जाए, जो चीजें जरूरत है वो तो हमने करनी है, चाहे वो लिबास हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, कुछ भी हो, लेकिन हमारे अपने जहन की जहत बहुत इंपॉर्टेंट है, जहन का रास्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, सोच आइडियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम डेवलप कर सकते हैं टीवी प्रोग्राम्स के जरिए, शोज के जरिए, बुक्स के जरिए, लिटरेचर के जरिए, मूवीज के जरिए, ड्रामों के जरिए से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। हमें असल में उस आइडियोलॉजी को डेवलप करना है कि जिससे दुश्मन हमें दूर कर रहा है, जिससे दुनियावी ख्वाहिशात हमें दूर कर रही है। तो मेरे ख्याल में अगर हम खुलूस के साथ, इखलास के साथ इस काम को जारी रखेंगे तो खुद ब खुद इसके अपने असरात होंगे।
जी नुसरत, मैं चाह रहा था कि तीनों पॉइंट जो हम लोगों ने डिस्कस किए, एक मटेरियलिज्म, एक स्पिरिचुअलिज्म, मानवियत और इमाम ज़माना का ज़हूर और इमाम ज़माना से राबता, मैं चाहता हूं कि आप एक ये तीनों कड़ी को आप एक एक्सप्लेन करके व्यूअर्स के लिए वाजे कर दें कि क्या राबता है मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिज्म और इमाम ज़माना से। इस चीज़ को अगर आप थोड़ा सी व्यूअर्स के लिए आसानी से थोड़ा एक्सप्लेन करें शायद बेहतर होगा नुसरत साहब।
जी बिल्कुल। देखिए बाज़ लोग समझते हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के हम एक किनारे पे चले जाएं और हम सिर्फ जो है वो अपनी इबादत में और किसी तरह के चिल्ला काटने में मसरूफ हों तो शायद हम बहुत कमाल पे पहुंच सकते हैं। तो देखिए ऐसा हरगिज नहीं है। माशरे में रहते हुए, क्योंकि जब इमाम ने आना है तो इज्तिमा होना है, एक गवर्नमेंट होगी, इस गवर्नमेंट में डिपार्टमेंट्स होंगे, तो यानी दुनिया है, दुनिया हमने रखनी है। मुझे अच्छा डॉक्टर इंजीनियर सब बनना है, ठीक है, आईटी मैनेजर बनना है, इकोनॉमिक हेड बनना है, मीडिया मैन बनना है, ये सब बनना है और ये सब दुनिया के अंदर ये सब मादा है, ठीक है ना। तो मुझे इस तक तो अप्रोच करना है, उसके साथ साथ बैक में मुझे अपनी स्पिरिचुअलिज्म को एनहेंस करना है। वो स्पिरिचुअलिज्म जो है वो इबादत के जरिए, दुआओं के जरिए से, और कुछ ऐसे दुआएं खासतौर पर असकार हैं, और खुद सबसे ज्यादा सोच, तफक्कुर, अफकार और अपनी आइडियोलॉजी पे काम करने की जरूरत है। तो यानी ब्लेंड ऑफ मेटलिज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म, क्योंकि देखिए ये दोनों चीजें होंगी तो वी कैन टेक ओवर द वर्ल्ड। अगर मसला हमारे पास दोनों में से एक भी चीज नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि स्पिरिचुअलिज्म इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो काम है इलाही काम है, अल्लाह का हुक्म होगा, अल्लाह का जो है वो हादी है, अल्लाह की हुकूमत, कुरान की हुकूमत, तो हमें मानवियत भरपूर चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हमें सारे जो जितने भी मादी चीजें हैं, मसाइल हैं, टेक्नोलॉजी है, आईटी है, स्पेस है, एवरीथिंग, उसमें भी हमें अबूर चाहिए। तो ये दोनों का ब्लेंड जब होगा और ये दोनों का हदफ इंतजार होगा तो खुद ब खुद ये दोनों इतना ब्लेंड होकर इंसान को परवाज की तरफ लेके जाएंगी और फिर सही मुंतजिर बन सकेगा। यानी ही कैन से कि हाँ मैं इंतजार कर रहा हूँ, ऐसा इंतजार नहीं मैं हाथ पे हाथ रख के बैठा हूँ, ये सिर्फ तस्मियां पढ़ रहा हूँ, नहीं, आई कैन गो मूव आउट, मैं काम करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं जॉब करता हूँ, मैं सारे काम करता हूँ और अपनी सोच को, अपनी फिक्र को पाक रखा हुआ है ताकि मेरा दिल जो है वो सिर्फ अपने इमाम की तरफ रुजू कर सके, तो तभी मैं मूव करूंगा आगे।
जी नुसरत भाई,
तो मेरे ख्याल में हमें इस तरह अगर हमारे लोग, हमारे माशरा सोचना करे तो हम लोग सब इमाम की नुसरत में, इमाम की जोर में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि उलमा जो है वो सिर्फ इमाम के जोर में रोल प्ले करेंगे, कतन ऐसा नहीं है। हर फर्द की जिम्मेदारी है, चाहे वो कंपाउंडर है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो एक बहुत बड़ा इंजीनियर है, चाहे वो एक छोटा मैकेनिक है, कुछ भी है, हर आदमी अपनी ड्यूटी को अगर सही तरह निभाएगा और अपनी इस मानवीयत को रोशन करेगा, अपने अपने बारे में सोचेगा, कायनात के बारे में सोचेगा, खुदा की तरफ मुतवज्जो होगा तो खुद ब खुद इंतजार उसके लिए खत्म हो जाएगा। अभी देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया के अंदर कि जो बिल्कुल ऐसे जिंदा हैं जैसे जहूर के अंदर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी को बिल्कुल ऐसे कर लिया जैसे इमाम वो देख रहे हैं। गलती करते हैं तो शर्मिंदा होते हैं, गिरिया करते हैं, खुदा की बारगाह में इस्तग़फ़ार करते हैं कि परवरदिगार, क्योंकि इंसान है, जाहिर है वैसे फरिश्ता तो नहीं है, इंसान से कोताहियां हैं, माशरा दुनियावी है, लेकिन उनकी तवज्जो ये है कि हाँ मेरा हदफ इमाम है,
जी
अगर मैं गिरता हूँ तो फिर खड़ा होगा, फिर गिरता हूँ फिर खड़ा होगा।
इसको अगर
और खुद इमाम भी पर उसको नजरें गर्म करते हैं, घर से तो नहीं कि इमाम बैठे हुए कहीं सो रहे हैं, खुदा ना खास्ता इमाम है, कायनात का पूरा निजाम उनकी वजह से चल रहा है, ही इज वॉचिंग। ये वजह है कि रवायत में है कि दो दम हफ्ते में अमाल नामा जो है वो हमारा इमाम के पास जाता है। तो बस एक जुमले के साथ अपनी गुफ्तगू इख्तिताम करूंगा कि हमारे जो नाम अमाल वीकली ट्वाइस इन अ वीक या वंस इन अ वीक इमाम के पास जाता है, तो क्या हमारे उन अमाल को देखकर इमाम जमाना खुश होते हैं या इमाम जमाना गिरिया करते हैं? अगर हम अपने इमाम को खुश नहीं कर सकते तो कम से कम मैं अपने आप से कहूँगा कि हमें अपने इमाम को रुलाना नहीं चाहिए।
जी बिल्कुल जी उसरत भाई, यानी इसको अगर मैं इस तरीके से अगर उसको कंक्लूड आपकी बात को वो करूं कि देखें हमारी ज़िंदगी हमें जीना है, इस ज़िंदगी में हमें मटेरियल्स की ज़रूरत है ज़िंदगी को जीने के लिए, लेकिन वो सारे मटेरियल्स का हदफ इमाम के हदफ से अगर मैं ज्वाइन कर दूं, यानी मेरे पास जो भी पोजेशंस हों वो सारी पोजेशंस इमाम के काम में अगर लगी हुई हों, मेरी ज़िंदगी इमाम के काम में लगी हुई, मेरी टैलेंट इमाम के काम में लगी हुई है, मैं अपनी हलाल रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करूं, जो भी मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं मटेरियल नीड्स है उसको भी पूरा करूं, लेकिन ओवरऑल गोल और मेरा डायरेक्शन मेरी ज़िंदगी का वो इमाम के गोल और इमाम के हदफ से मैच कर रहा हो, यानी इमाम की एक्सपेक्टेशंस को आइडेंटिफाई करूं कि इमाम को आके अगर दुनिया में जुल्म के खिलाफ कायम करना है, अदल को कायम करना है, ये इमाम के गोल्स में है कि इमाम को अदल व इंसाफ को कायम करना है और जुल्म का खात्मा करना हो, तो मेरे गैबत में सबसे बड़ी ड्यूटी मुझे ये समझ में आ रही होती है कि मुझे भी वही इमाम के काम को आगे बढ़ाना है। अब ये काम को आगे बढ़ाने के लिए मुझे मटेरियल्स की भी ज़रूरत है, मटेरियल पोजेशंस की भी ज़रूरत है, चैनल्स की भी ज़रूरत है, मीडिया की भी ज़रूरत है, मुझे टेक्नीशियंस की भी ज़रूरत है, मुझे हर एस्पेक्ट में लोगों की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि मुझे वक्त के इमाम की नुसरत करना है कि वक्त के इमाम को पूरी दुनिया में अदल व इंसाफ को जो कायम करना है। तो आपकी बात को अगर मैं इस तरीके से कंक्लूड करूं कि हमें मटेरियल्स चाहिए खुद के लिए हलाल रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने के लिए और बची हुई वक्त के इमाम की खिदमत में पेश करने के लिए और वक्त के इमाम का जो मिशन है वो गोल है उसकी खिदमत करने के लिए, तो शायद क्या ये सही उसका कंक्लूजन होगा आपकी बात का नुसरत साहब?
जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है कि देखिए जब तक हम सही इस्तेमाल नहीं करेंगे इस मादियत का, क्योंकि दुनिया तो है ही आपको पता है मादा है और दुनिया के अपने मसाइल हैं, हमें उसी में से लड़के उसी के अंदर सारी चीज़ों को सहते हुए बर्दाश्त करते हुए हमें आगे जाना है। और इसीलिए जिस तरह मिसाल के तौर पर आपका टीवी का जैसे चैनल है, आप प्रोग्राम कर रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी है, मीडिया है, तो इसी में देखें आप एक आदमी खुदा ना खास्ता इसमें कोई गलत कर रहा हो काम, लेकिन यही काम एक अच्छा काम है जो अभी किया जा रहा है कि इसके जरिए से वो पैगाम दिया जा रहा है कि जो सारे अंबिया जिसका इंतजार कर रहे थे, कुरान जिसके लिए जो है वो कहता है कि वो आएगा जो तुम में बाकी है, रिवायतें जिसके बारे में कह रही हैं, तो आप और हम अगर वो काम कर रहे हैं तो इससे बढ़कर और इससे अच्छा काम क्या है? और
जी
तो और इसको एक ऐसी शक्ल में प्रेजेंट किया जा रहा है कि वो कदम बिल्कुल ऐसा नहीं है कि दुनिया से कटके भी नहीं है, ऐसी कोई इसकी हालत नहीं है कि हम लोग अगर इसको देखें तो लोग बोलेंगे यार ये तो हमें नहीं चाहिए ना। नहीं, आपको दुनिया के बराबर भी खड़ा होना है, टेक्नोलॉजी वाइज, ट्रैफिक वाइज, म्यूजिक, हर चीज आपकी जो है वो इतनी स्ट्रांग हो कि दुनिया वाले उसको कबूल भी करें और फिर आप उसी कबूली में आप जो है वो सही मैसेज दें। तो मेरे ख्याल में सही यूटिलाइजेशन ऑफ मैटर है जो इस मादा दुनिया।
जी नुसरत भाई, मैं आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि जिस तरह हम इमाम की नुसरत के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं, तो इमाम की नुसरत के हवाले से आज के जो मुआशरे में नौजवानों का किरदार आप किस तरह देख रहे हैं? नौजवानों को अपनी जो मसरूफियात हैं और तरजीहात हैं उनको किस समत में लेकर जाना होगा कि वो इमाम के सही सिपाही बन सकें?
देखिए नौजवानों में देखें सबसे ज्यादा तो ये है कि देखें जब तक इल्म हासिल नहीं करेंगे, मारिफत हासिल नहीं करेंगे, जाहिर है जब तक जिस बंदे की जिस शख्स की जिस हस्ती की मारिफत नहीं होगी आप उसका सही ना इंतजार कर सकते हैं ना आप उसके लिए कोई काम कर सकते हैं। तो दुनियावी जैसे हमने बात की कि हमें सारी चीजें हासिल करनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ये वो, उस तरह में दीन की मारिफत भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दीनी तालीम हासिल करना, दीनी इल्म, चाहे वो अहकामात हों, चाहे वो अकायद हों, चाहे वो फलसफा अखलाक हो, ये सारी चीजें देखिए जब तक आप सीखेंगे नहीं कैसे करेंगे आप?
बिल्कुल,
वो चीजें जा रही सीखनी पड़ती है, पढ़नी पड़ती है, सुननी पड़ती है, कुछ ना कुछ क्लास लेनी पड़ती है। बगैर क्लास के आदमी जो है वो कभी भी अपने आप को अपग्रेड नहीं कर सकता। तो जवानों को खासतौर पे जो बेस्ट के हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि अपनी सारी मसरूफियात के साथ, अपनी सारी तालीमात के साथ अपनी जिंदगी में कुछ टाइम निकालें स्पिरिचुअल लर्निंग के लिए, दीनी तालीमात के लिए, चाहे वो समर कैंप की सूरत में हो, चाहे वो 6 मंथ्स का कोर्स हो, चाहे वो दरमियान में आप 1-2 साल के लिए हौजे की तरफ रुजू करें, और अगर अगर आप समझते हैं आपके अंदर सलाहियत पाई जाती है आप पढ़ सकते हैं, तो कुछ जवानों को मेरे ख्याल में हौजे की तरफ आना चाहिए। हौजे के अंदर बहुत कमी है, बहुत शॉर्टेज है नेटिव्स की, हर इलाके के लोग हों ताकि वो सीख कर अपने अपने एरियाज में, अपने कंट्रीज, अपने शहरों में अपनी ही जबान में प्रीचिंग कर सकें।
अगर जो, जो आपने दीनी तालीम का जिक्र किया कि नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा हौजे की तरफ बढ़ना होगा, दीनी तालीम को हासिल करना पड़ेगा, तो जैसा कि आप खुद भी इस वक्त हौजा इल्मिया कुम में ज़ेरे तालीम हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ख़ासकर जो वेस्ट में जो नौजवान हैं और बच्चे हैं अमेरिका, कनाडा, यूरोप और यूके में रहने वाले, उनके लिए हौजा इल्मिया कुम में किस किस्म के, यानी अगर वो यहाँ से कोई वहाँ पढ़ने के लिए जाना चाहता है तो जो उसे कुछ मुश्किलात पेश आती हैं वालदैन की तरफ से या दोस्तों की तरफ से, तो उसको किस तरह टैकल किया जाए?
देखिए ये तो बिल्कुल अहमियत पर है कि जब अगर आपको एक चीज़ की अहमियत का अंदाज़ा हो गया है तो यू कैन गो फॉर इट। बच्चे पाकिस्तान से, इंडिया से पढ़ने के लिए जी लंदन जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, और वालदैन बड़े आराम से भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? एमबीए कर लेगा, इकोनॉमिक्स पढ़ लेगा तो अच्छी उसकी लाइफ।
दुनिया आपकी तरफ आना चाह रही है तो आपको क्या प्रॉब्लम? आप तो सेट है।
बिल्कुल।
अब आपको एक स्टेप आगे जाना चाहिए, आपको अपने बच्चों को वहां भेजें। अक्सर लोग दोस्त गिला करते हैं कि सही जो है वो स्कॉलर्स नहीं है हमारे पास, वी हैव शॉर्टेज ऑफ स्कॉलर्स, हमारे पास ऐसे स्कॉलर्स नहीं है जो हमारे यंगस्टर्स को समझ नहीं सकते, हमारे यूथ को मेंटेन नहीं कर सकते। तो भाई कौन आएगा किसी और जगह से? तो कोई उठ के आपके यूथ को सही नहीं करेगा। आपके यूथ में से कोई आए, लर्न करे, सीखे और जाए, और माशाल्लाह लुक कर रहे हैं। जैसे खुद जमील भाई आप ही के पास से उठ के आए हैं और माशाल्लाह वहाँ जेरे तालीम है और देखें भी आप लोगों के दरमियान में है, और इतना बहुत है, शेख हमजा सौदागर है, शेख सलीम है, शेख
उसामा
अली है, कितने सारे हैं जो उन्हीं से आए और माशाल्लाह जब जाते हैं तो देखें लोग कितना उनका इस्तकबाल करते हैं, लोग कितनी डिमांड है, मगर दे आर वेरी फ्यू पीपल। आपके फिंगर टिप्स से खत्म हो जाते हैं, यानी कि ये एक बड़ा फुकदान है। आप लेते तो बहुत ना रहे हो आगा इस कमिंग और ऐसा है वैसा है, तो हम कहते भी हैं क्योंकि हमें बहुत अच्छा आलिम चाहिए हमारे सेंटर के लिए ये हो, तो नहीं आपने क्या तैयार किया? आप भी तो कुर्बानी दे ना किसी एक बच्चे को, उसमें कुर्बानी क्या है? मतलब सबसे बड़ी कंपनी है दुनिया की इमाम जमाना की, लोग मल्टीनेशनल में नौकरी करवानी है, बड़ी बड़ी फर्म के अंदर जॉब के बड़े खैर पाँव होते हैं, यहाँ हो जाए जॉब, वहाँ हो जाए जॉब, ये तो पूरी कायनात का सीईओ है आपका इमाम, और इमाम जमाना की ये नौकरी है जो दीन की तालीम हासिल करता है। अब इससे बड़ी तो कोई कंपनी भी नहीं है, इसमें जो जाएगा उसको क्या प्रॉब्लम है? दुनिया भी उसकी, आखिरत भी इसकी है। तो ये जब तक हम इस चीज को समझेंगे नहीं, और ये तभी समझेंगे जब हमारी जो जिम्मेदारी होगी, जब तक हमें मारिफत, देखें करबला वालों को मारिफत थी ना, बोला कि करबला वालों के जो सामने खड़े हुए थे उनको क्या था? उनको पैसे, घर, माल, औलाद, दौलत, सोना, लेकिन इधर वाले जो खड़े हुए थे इनको क्या नहीं बोला? इनके का घर नहीं थे, इनके क्या बच्चे नहीं थे, इनको क्या माल नहीं, मगर इन्होंने सौदा किया, इन्होंने अपने आप को खुदा को दे दिया, अपने आप को खुदा को भेज दिया, खुदा के लिए सब कुछ। तो खुदा ने क्या दिया? आज सारी नमाज, पूरी दुनिया में हर नमाज के बाद आप जो है वो सलाम अलैका ताबुल हुसैन, पूरी दुनिया इमाम के साहबियों को सलाम भेजती है हर नमाज के बाद, ठीक है? कितना रश होता है आप अरबईन में जाए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो काम किया है, तो इतनी जब बड़ी बड़ी मिसालें आपके हमारे सामने मौजूद हों, तो फिर मेरे ख्याल में शायद हम अभी तक करबला को समझ ही नहीं पाए। करबला को समझ गया वो कहाँ, देखिए हमारे बच्चों से क्या अफजल है, हम हमारे बच्चे क्या हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम से बेहतर है? हमारे बच्चे अगर अली असगर अलैहिस्सलाम से क्या बेहतर है, हम तो उन्हीं की दरगाह में दुआ करके हम अपनी औलादों को लेते हैं, बीमार हो जाते हैं तो उनका वास्ता देते हैं, बाबुल हवाई में तो वो उन्होंने कुर्बानी दे दी दीन के लिए, उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया दीन के लिए, तो हम क्या उनसे बहुत ज्यादा बेहतर है क्या जो हम कहते हैं कि हम नहीं कर रहे, हम नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि हम नहीं समझे अभी तक। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमें बहुत जरूरत है अपने नजरियात को बदलने की, वी हैव टू चेंज अवर आइडियोलॉजी। हमारी अभी तक आइडियोलॉजी सही नहीं हो पाई है, हम अभी तक कर्बला से सही नहीं ले पाए जो लेना था, जिसने ले लिया आज वो देखें आप ईरान के अंदर देखें, हिजबुल्ला के अंदर देखें, आप देखें वो कहाँ जा रहे हैं। रोक नहीं पा रहा हूँ जवानों को कोई, क्योंकि शब में मनाजात इतनी है, सुबह में ज्यारत आशूरा है, और दिन के अंदर अपनी हर फील्ड के अंदर कामयाब है, चाहे वो फुटबॉल खेलने वाला हो, चाहे वो स्पेस में काम करने वाला हो, कोई भी है। आप समझ गए कि असल अपने आप को खुदा को दे दो। इसलिए आयतुल्लाह खुमैनी हफ़िज़हुल्लाह फरमाते हैं कि आजादी के सही माने ये हैं कि अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दो। जिसने अपने आप को खुदा के हवाले कर दिया वो आजाद है, वो फिर वही कुछ करता है जो खुदा पसंद करता है, फिर कायनात का पूरा निजाम उसकी मदद करता है, हवाएं उसके ताबे हो जाती हैं, पत्थर परिंदे जब सब कुछ उसके ताबे हो जाता है, और सब से उसके साथ इस्बाब बनाकर उसको कामयाबी की तरफ ले जाते हैं। इसलिए इमाम ज़माना अज़ल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के सिपाहियों के लिए है कि जब वो दरख्तों को इशारा करेंगे दरख्त फट जाएंगे, बादलों पर परवाज करेंगे, क्यों? क्योंकि सब कुछ जो अपनी जिंदगी में था खुदा को दे दिया, अब जो कुछ खुदा के पास है खुदा जाहिर है उन्हीं को देगा और बाकियों को देगा।
आगा बहुत बहुत शुक्रिया, जिस तरह आपने इस टॉपिक को काफ़ी अच्छे तरीके से नाज़रीन की खिदमत में पेश किया कि किस तरह हम इमाम से मुत्तसिल होकर ईद अल फितर को मनाना चाहिए, और फिर इसके अलावा और भी जो ज़िंदगी में अमूर हैं किस तरह हम उनको बजा ला सकते हैं, लेकिन इमाम से मुत्तसिल होकर। फिर आपने तालीम की अहमियत पर ज़ोर दिया और इससे फिर हौज़े की बात निकल आई और दीनी तालीम की, तो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ की जो नौजवान हैं उनके लिए भी काफ़ी उम्मीद करते हैं कि ये मुफीद रही होगी। आगा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया, खुदा आपको कामयाबी में और तरक्की और तौफीक अता
फरमाए इंशाल्लाह, इलाही अमीन। आगा बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे। जी आगा, बहुत ही जो उन्होंने एक जिस तरह नौजवानों के लिए जो है इसमें बहुत अच्छा मैसेज था कि अगर इमाम से मुत्तसिल यानी इमाम के जो सच्चे सिपाही, जिस तरह उन्होंने जिक्र किया कि लबनान में एक ग्रुप ने किस तरह इमाम से अपनी सारी ख्वाहिशात को, दुनियावी ख्वाहिशात को अल्लाह की राह में उनको हायल नहीं होने दिया और किस तरह अपनी वो दुनियावी ख्वाहिशात को बेच दिया, तो वही लोग जो हैं वो इमाम के सच्चे सिपाही हैं। और ये कब मुमकिन हुआ? जब उन्होंने तकवा इख्तियार किया और दीन की राह पर चले। तो यहाँ पे जो नौजवान हैं उनको भी इससे काफ़ी सबक सीखना चाहिए कि आगा ने एक बात की तरफ बहुत अच्छा इशारा किया कि यहाँ के लोग गिला करते हैं कि हमें अच्छे उलमा जो हैं वो नसीब नहीं होते और अच्छे जो प्रीचर हैं मुबल्लिगीन हैं वो हमारी यूथ का जो है वो जनरेशन गैप होने की वजह से भी, लैंग्वेज बैरियर होने की वजह से भी काफ़ी मुश्किलात हैं यहाँ पे यूके और यूरोप में
जी।
तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि अगर यहाँ से लोग वहाँ पढ़ने नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा
जी,
तो
ये जाएंगे?
बिल्कुल, तो यहाँ से लोग अगर जाएंगे पढ़ के वापस आएंगे तो अपनी कम्युनिटी को सर्व कर सकेंगे
जी। देखें सबसे इम्पोर्टेंट सलमान भाई के अपने लिए गोल सेटिंग ज़िंदगी के लिए क्या रखा है बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में गोल सेटिंग ही नहीं रखी है कि देखिए कुछ लोगों ने गोल सेटिंग रखी है मुझे जन्नत जाना है, बस मुझे जन्नत से ज़्यादा कुछ नहीं सोच सकते, जबकि हकीकत क्या है कि मैं भी एक मखलूक हूँ, जन्नत भी एक मखलूक है, अल्लाह की मखलूक है जन्नत,
बिल्कुल
मैं भी एक मखलूक हूँ। खुदा ने कहा है कि तुम अशरफुल मखलूक हो, तुम सबसे बेहतरीन मखलूक है, यानी इसीलिए कहा गया है कि जन्नत कुछ लोगों की मुश्ताक होगी, जन्नत कुछ लोगों की मुंतज़िर होगी। वो किनकी होगी? वो जो वो लोग होंगे जिन लोगों ने अपने 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 पैरामीटर्स जन्नत से भी ज़्यादा अफजल रखे होंगे। जन्नत से अफजल पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं? वो जो करबला वालों ने रखे थे, करबला वालों के लिए इमाम हुसैन ने कहा था कि आप चले जाएं, जन्नत का वादा मैं आपसे करता हूँ,
अल्लाहु अकबर।
लेकिन उन्होंने जन्नत से आगे अपने गोल्स रखे थे, उन्होंने कहा था इमाम की इताअत में अपनी जिंदगी गुजार देंगे।
यानी जो लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को छोड़कर जाना चाह रहे थे, इमाम हुसैन उनको भी जन्नत का वादा कर रहे हैं।
छोड़ के जा रहे हैं, इमाम कह रहे हैं फिर भी मैं आपको जन्नत दूंगा, उन्होंने कहा नहीं हमें वो जन्नत नहीं चाहिए, हमें आपकी जन्नत चाहिए। यानी उन लोगों ने अपने गोल्स जो है वो अल्लाह के वक्त, अपने अल्लाह के नुमाइंदे वक्त के इमाम का सिपाही बनने में جنت سے ہائر سٹیٹس اپنے لیے سمجھا تھا. کیوں؟ بالکل. کیونکہ جس کو امام مل گیا اس کو تو جنت مل ہی جائے گی. یعنی فارسی میں کہتے ہیں جس کو اگر 100 مل گیا اس کو 90 تو مل ہی گیا ہے. یعنی 90 چھوٹا ہے, 100 بڑا ہے. اگر آپ کو 100 مل گیا یعنی 90 آپ کو مل چکا ہے. تو کچھ لوگوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہمیں وقت کے امام کا سپاہی بننا ہے. بڑا ارادہ ہے, اس کے لیے بڑا دل چاہیے, بڑا جگر چاہیے. دیکھیں اگر ہمارے ارادے جتنے ہوں گے ہمیں اتنا, مثلا اگر میں نے 100 کا ارادہ کیا, اگر 100 نہیں ملا تو 80 ملے گا. لیکن اگر میں نے ارادہ ہی 50 کا کیا ہے تو مجھے 40-35, 30-35, 40 ملنے, زیادہ سے زیادہ 50 ملنے, کیونکہ میرا ارادہ کمزور ہے. انہوں نے کہا کہ اگر مجھے, میرا ویژن کیا ہے, میں اگر وقت کے امام کا سپاہی بننا چاہتا ہوں. اکیلے میں جائیں, میں اپنے آپ سے خود پوچھوں کیا میں وقت کے امام کا سپاہی بننا چاہتا ہوں.
بالکل.
سارے ویور سے کہوں گے جائیں, اپنے آپ اکیلے میں خود جائیں, اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم زبان سے تو کہتے ہیں ہم وقت کے امام کا سپاہی بننا چاہتے ہیں, واقعی ہم وقت کے امام کے سپاہی بننا چاہتے ہیں. اگر واقعی چاہتے ہیں تو اپنے آپ سے یہ اگلا سوال کریں کہ وقت کے امام کے سپاہی کے لیے کیا کرنا چاہیے, بننے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت,
کیا کرائٹیریا جو ہے وہ ہونا چاہیے,
کیا کرائٹیریا ہونا چاہیے, اور پھر میرے اندر کون سے کرائٹیریاز ہیں. وہ جو گروپ کی بات کر رہے ہیں, ان لوگوں نے واقعی امامت کو اور انتظار کو صحیح سے سمجھا. ان لوگوں کے پاس مثلا جو لبنان میں ایک ریزسٹنس گروپ ہے, جو اہل تشیع ہیں, جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں, ان کے پاس دنیا کی ساری ٹیکنالوجی اویلیبل ہے. یعنی ٹیکنالوجی پہ مسلط ہیں. ایسے نہیں کہ مثلا پہاڑوں پہ جا کے بیٹھے ہیں, نمازیں تسبیحیں پڑھ رہے ہیں, نہیں, ٹیکنالوجی پوری دنیا کی اویلیبل ہے. اور جنگ کے میدان پہ کہتے ہیں کہ جوشن صغیر ہر شب کو پڑھا کرتے تھے. یعنی جوشن صغیر ہر شب کو پڑھا کرتے تھے جب جنگ میں ہوتے تھے, تو زیارت عاشورہ جنگ میں پڑھا کرتے تھے. یعنی یہ وہ گروپ ہے جس نے ٹیکنالوجی میں اپنے آپ کو اتنا آگے کر لیا ہے کہ دشمن کے کاک پٹس میں جا کر وہ دشمن کے کاک پٹس کو ہیک کر لیتا ہے. اور دشمن بھی اسرائیل جیسا.
بالکل.
جو اپنے آپ کو بہت بڑا دنیا کا تونگر بتاتا ہے اور بہت بڑا ٹیکنالوجی,
یعنی کہ جن کی ٹیکنالوجی دنیا بھر میں مشہور کی جاتی ہے,
ہاں, کہ وہ بہت بڑے ٹیکنالوجی میں. یعنی یہ کچھ جوان ایسے اٹھتے ہیں جو امام کی مددگار بننا چاہتے ہیں, امام کے سپاہی بننا چاہتے ہیں. یہ اٹھتے ہیں, یہ بڑے بڑے طاغوتوں کو زمین پر گرا دیتے ہیں, اور یہ انہیں کہتے ہیں کہ تمہاری مثال اس کی جیسی ہے کہ جیسے مکڑی کے جال کی طرح ہے, کہ تم نے پوری دنیا میں مکڑی کا جال بچھایا ہوا ہے, اور تو ان کی مثال مکڑی کے جال کی طرح کہتے ہیں جو خدا کے سامنے کھڑا ہے. ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک ہمارے دوست تھے, ہم جب نئے نئے ایران گئے تو اس نے مذاقیہ طور پر اس سے کہا کہ تم کیا لڑو گے, یہ امریکہ سپر پاور ہے, اس سے تم کیا لڑو گے. اس نے پلٹ کے کہا کہ ہمیں لگتا ہے یہ پاگل ہے. انہوں نے کہا تمہیں کیوں لگتا ہے یہ پاگل ہے. اس نے, ایک جوان طالب علم ہی تھا, ایک جوان رستے پہ کھڑا ہو, وہ کہتا ہے یہ پاگل ہیں جو خدا کی فوج سے لڑنا چاہتے ہیں. آیا خدا کی فوج سے کوئی جیت سکتا ہے؟ یعنی یہ یقین ہونا کہ ہم امام کے واقعی سپاہی ہیں, امام کی راہ میں لڑ رہے ہیں.
بالکل.
ہمیں وہ امام کے مقصد کے لیے زندگی کو بسر کرنا ہے کہ ہمارے وقت کے امام کو آگے پوری دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کرنا ہے. میری پوری زندگی امام کے اس مقصد کے لیے صرف ہو جائے. کچھ لوگوں نے یہ ارادہ کیا, خدا نے مدد کی, پوری دنیا میں خدا نے ان کو عزت بخشی ہے. ٹیکنالوجی میں آگے ہیں, دعاؤں میں, معرفت میں, روحانیت میں, معنویت میں, ہر پہلو
سے
میں
بڑھ کر جو ہے وہ کمیونٹی کے لیے جو وہ کام سر انجام دے رہے ہیں, رفاہی کام اور فلاحی کام,
ہاسپٹلز بنائے ہیں, سوشل سینٹرز بنائے ہیں, سکولز بنائے ہیں, پبلک کی خدمت کر رہے ہیں. پبلک کی جب خدمت کرنے آتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ شیعہ ہے, یہ سنی ہے, یہ کرسچن ہے. تمام لوگ ان سے محبت کرتے ہیں, تمام لوگ ان کو دل سے چاہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. اہل بیت نے یہ کیا, رسول نے یہ کیا. جب دیتے تھے تو یہ نہیں پوچھتے تھے تم شیعہ ہو, تم سنی ہو, تم اہل بیت, نہیں, دینے میں سب کو دیتے تھے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو امام کے سپاہی بنے. خوب, میں اپنے آپ سے سوال کروں, کیا میں امام کا سپاہی بننا چاہتا ہوں؟ خوب, اگر میں بننا چاہتا ہوں اس وقت امام کے سپاہی کو, اور اس زمانے میں, جو زمانے میں ہم زندہ ہیں یہاں پر یوروپ میں, امام کے مقصد کو اور امام کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کے لیے کون کون سی چیزوں کی ضرورت ہے؟ اس میں سے ایک یہ ہے کہ ایک فقدان, ایک گیپ جو سب سے بڑا گیپ ہے, اچھے علماء کا ہونا. یہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ ہمارے پاس شہید مطہری جیسے علماء ہونے چاہیے. جو شہید مطہری نے کیا کیا, شہید مطہری نے دین کی گہری باتوں کو پڑھا, قرآن کو پڑھا, حدیثوں کو پڑھا, اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے یہاں پر آئے, اور یہاں پر آنے کے بعد عوام میں آ کر वो दीन की गहरी बातों को पब्लिक के लेवल पर लाकर समझाया और पब्लिक के इंटेलेक्चुअल्स को दीन को समझाया, ये उन्होंने किया। खूब, यहाँ पर भी आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर रिसर्च होती है, यहाँ पर पीएचडीज़ होती हैं, डॉक्टरेट्स होती हैं, जिनके जवाब देने की ज़रूरत है। देखिए, ओरिएंटलिज्म एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर वेस्टर्न हिस्टोरियंस और ओरिएंटलिस्ट इस्लाम को पढ़ते हैं और इस्लाम को ओरिएंटलिस्ट और हिस्ट्री के हिसाब से पढ़ते हैं। इन लोगों ने शिया हिस्ट्री पे, शिया हदीस पे एनसाइक्लोपीडिया लिखा हुआ है। यहाँ की यूनिवर्सिटी ने, अब मुझे याद नहीं है, शायद 100 साल पहले शिया हदीसों पे पहला एनसाइक्लोपीडिया वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ ने लिखा है। शर्म की बात है हमारे लिए, हमें लिखना चाहिए था, हमारी फारसी और अरबी जबान में है, इंग्लिश जबान में हमारे पास नहीं था, ये इन लोगों ने आके लिखा है। बहुत सारी किताबें इन लोगों ने लिखी हैं हमारे हमारे दीन से मुतालिक। खूब, तो वही इसका जवाब कौन देगा? कब तक हम डिपेंडेंट रहेंगे कि इंडिया पाकिस्तान के उलमा हैं? वही विजन की बात है कि हमारा विजन ये है कि हम अगले 50 साल में यहाँ पर इंटेलेक्चुअल कॉन्टेंट जो है, जो इंटेलेक्चुअल पब्लिक को चाहिए, वो इस्लाम, जो प्योर इस्लाम कुरान हदीस नहजुल बलागा सहीफ़े सज्जादिया में है, उसको लाके पब्लिक में उतारें। ये विजन अगर हमारे पास होगा सलमान भाई, तो हम वाकयन वो विजन के मुताबिक लोग आएंगे, हौजे में जाएंगे, हौजे में फिर वो पढ़ेंगे भी, तो सिर्फ मजलिसे पढ़ने के लिए नहीं पढ़ेंगे। एक बहुत बड़ी मुश्किल ये है कि जो हौजे में जाते हैं उनकी सबसे बड़ी मुश्किल ये कि हमें मजलिस पढ़ना है, बस मजलिस पढ़ना,
यानी सिर्फ खिताबत करनी है।
जी हाँ, सिर्फ खिताबत नहीं, खिताबत करना बहुत बड़ी खिदमत है, वो भी एक खिदमत है, लेकिन सिर्फ ये नहीं है। आपको आना है वो अहले बैत का इल्म जमाने के मुताबिक जमाने में पहुंचाना है, ये हम लोगों का सबसे बड़ा चैलेंज है।
जिस तरह आपने जिक्र किया कि काफ़ी मुश्किल पेश आती है कि अभी आपने, हम कब तक डिपेंडेंट रहेंगे, तो यहाँ पे जो यूके यूरोप में जो मुसलमान बसते हैं उनको एक प्लानिंग के तहत चलना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन जिस तरह आगे वक्त आता रहेगा।
एक छोटी सी कंपनी आपको चलाना है, उसके लिए आपके पास 10 ईयर्स की प्लानिंग होना चाहिए, 5 ईयर्स की प्लानिंग होना चाहिए, शॉर्ट टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, विजन बनता है, विजन स्टेटमेंट बनता है, मिशन स्टेटमेंट,
पॉलिसी जो है वो पब्लिश की जाती है,
स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है। हर एक छोटी सी कंपनी हो उसके लिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है, जिसके अंदर विजन सेट किया जाता है, मिशन सेट किया जाता है, गोल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, विजन स्टेटमेंट, शॉर्ट टर्म गोल्स बनाए जाते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स बनाए जाते हैं, वो शॉर्ट टर्म प्लान्स बनाए जाते हैं, फिर उन तक पहुंचने के लिए गोल्स बनाए जाते हैं, गोल्स के लिए टारगेट्स बनाए जाते हैं। एक प्लानिंग का प्रोसेस होता है कि आपको इस विजन तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना है, 10 ईयर्स में क्या करना है, 20 ईयर्स में क्या करना है, 50 ईयर्स में क्या करना है। हमारी मस्जिदों के पास स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की ज़रूरत है, यानी हमारी मस्जिदों के पास स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होना चाहिए कि मसलन अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 200 फैमिलीज आती हैं, तो ये 200 फैमिलीज के लिए हमने क्या विजन रखा है,
और इन 200 फैमिलीज, यानी सेंटर्स का बहुत बड़ा रोल है उलमा का कि वो जो नौजवान आ रहे हैं उनमें से जो इंटेलिजेंट लोग हैं उनका इंतखाब करें
जी,
और उनको हौजे की तरफ तालीम हासिल करने के लिए भेजें।
खुद ये उलमा, यानी इनकी हमारी जिम्मेदारी, मतलब मैं खुद एक छोटा सा अदना सा तालिब इल्म, हमारी जिम्मेदारी कि जो सेंटर्स में जाएं वहाँ की रिक्वायरमेंट्स को समझें, वहाँ की डिमांड्स को समझें, चैलेंजेस को पढ़ें, स्वॉट एनालिसिस करें, स्ट्रेंथ्स देखें, वीकनेसेस देखें, अपॉर्चुनिटीज देखें, थ्रेट्स देखें, सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद हम तालिब इल्म, जो अहले बैत के दर के तालिब इल्म हैं, हम आकर मोमिनीन को एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक होलिस्टिक इस्लाम की व्यू पेश करें, मोमिनीन के लिए उस तरीके से प्लान करें कि शिया जवानों की नेक्स्ट 10 ईयर्स के अंदर क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या थ्रेट्स हैं, इन्हें हम लोगों को ये करना पड़ेगा। अच्छा, अगर हमारी तवक्को ये कि हमारे उलमा ये नहीं करते, जो उलमा करते हैं अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी चैलेंजेस के हिसाब से,
उनकी इस्तेदाद है वो उसके मुताबिक,
लेकिन ज़रूरत सलमान भाई हमारी इससे कहीं ज़्यादा है। हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया में वक्त के इमाम का ज़हूर होना है, उनकी हुकूमत होनी है, उनके पैगाम को पहुंचना है, लोगों को शियत की तरफ, अहले बैत की तरफ पलटना है, लोगों को मटेरियलिज्म से हट के स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जाना है। ये बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, इसके लिए बड़े बड़े लोग की ज़रूरत है। फिर वही अगर लोगों ने अपना हदफ बना लिया कि मुझे सिर्फ जन्नत जानी है, खूब जन्नत जानी है, तो कहेंगे मैं नमाज़ पढ़ूंगा, रोज़ा रखूंगा, हज करूंगा, ज़कात दूंगा, आज़ादारी करूंगा, ये करूंगा, मैं जन्नत चला जाऊंगा, छोटा सा गोल हुआ। नहीं, अगर कोई ने अगर ये हदफ रखा है कि मुझे वक्त के इमाम का सिपाही बनना है, यानी यूरोप में अगर कोई इमाम का अगर सिपाही मैं बनना चाहता हूं, तो यूरोप में मेरी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी एक यूरोप एक इमाम अगर एक तवक्को रखते हैं कि मेरा एक सिपाही यूरोप में है, यूके में है, यूएस में है, कनाडा में है, जहां पर भी अगर मेरा एक सिपाही है, تو امام کی اس زمانے میں آپ سے کیا توقع ہے؟ آپ یہ سوال کریں کہ امام کا پیغام اگر آپ نے نہیں پہنچانا ہے تو کس نے پہنچانا ہے؟ امام کے مقصد کو دنیا تک اگر آپ نے نہیں پہنچانا ہے تو کس نے پہنچانا ہے؟ بڑا ذمہ داری کو اپنے ہاتھوں میں لیں، بڑے گولز رکھیں، ارادہ بلند رکھیں، امام کی مدد حتمی ہے. امام کبھی بھی ہم بے سہارا نہیں ہیں، ہم یتیم نہیں ہیں، ہمارا امام زندہ ہے. اگر ہم نے بڑے گولز لیے اپنی زندگی کے اندر، امام نے ہماری مدد کرنی ہے. امام بہت کریم ہے، امام بہت رحیم ہے. امام اس امام کے چاہنے والے ہیں جن کا کرامت میں یہ ہے کہ اپنے دشمن کو اناج بانٹا کرتے تھے، یعنی ان کو اناج بانٹا کرتے تھے جو دشمن تھے. جب
بالکل
بھوک یہاں پر ڈراٹ آ جایا کرتا تھا تو وہاں پر وہ دشمنوں کو اناج دیا کرتے تھے. بالکل. امام حسین وہ امام ہے جو دشمن کو پانی پلاتے تھے. اگر امام ایسے ہمارے ہیں کہ دشمنوں کو پانی پلا رہے ہیں، آپ رزق کے لیے کیوں پریشان ہیں؟ کیا اگر آپ نے امام کے مقصد کے لیے اپنی زندگی کو صرف کرنا چاہا تو امام آپ کو بنا رزق کے چھوڑ دیں گے؟ ارے آپ امام سے مانگیں، جو آپ مانگیں گے امام سب دیں گے. لیکن اپنے مقصدوں کو بلند رکھیں، اپنے مقصدوں کو، اپنے گولز کو اگر ہم لوگ ہائر رکھیں. شاید کالر
نہیں، ہمارے کالر نہیں، ہمارے پاس پروگرام کا اختتام میں صرف 5 منٹ باقی ہیں. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جو ہم نے آج گفتگو کی، اس کو اگر سمرائز کیا جائے کہ یہاں کی جو کمیونٹی ہے، اگر ہم حوزے کے حوالے سے اور دینی تعلیم کی بحث اگر چھڑی، جیسے کہ نصرت بھائی نے بھی اس کو آغاز کیا، کہ یہاں پہ کمیونٹی کو زیادہ سے زیادہ انوالو ہونا پڑے گا اس ان معاملات میں.
دیکھیے، اس میں سلمان بھائی ہر ایک کا رول ہے. یعنی پہلا احساس کا، نیڈ کا، کہ ہمارے اندر نیڈ ہے اس چیز کی. ہم اس چیز میں بلیو کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو نالج ہے وہ دنیا کی ریکوائرمنٹس کو فلفل کر سکتا ہے. آج دنیا میں سب سے بڑا فقدان اسپریچولیزم کا ہے. لوگ اوشو کی طرف جا رہے ہیں، لوگ الگ الگ مذہب کی طرف جا رہے ہیں، بدھزم کی طرف جا رہے ہیں، جبکہ یہ کمپلیٹ سلیوشن نہیں ہے. انسان کے ایک اسپیکٹ جو اسپریچول نیڈ ہے صرف اس کو پورا کرتا ہے. لیکن انسان میں صرف اسپریچول نیڈ نہیں، انسان کے اندر سوشل اسپیکٹ بھی ہے، انسان کے اندر پولیٹیکل بہت سارے اسپیکٹس ہیں، لیکن صرف ایک اسپیکٹ کو کور کرتا ہے جو اسپریچولیٹی. تو لوگ اس طرف جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ ان کی پریزنٹیشن بہت ہی ایکسلنٹ ہے. یہ لوگ اپنی باتوں کو بہت اچھے سے پریزنٹ کرتے ہیں. پلس ان کے یہاں مشکل یہ ہے کہ یہ اچھائی اور برائی کو مکس کر کے پیش کر سکتے ہیں. یعنی آپ کو کوئی رولس اینڈ ریگولیشنس نہیں دیتے ہیں، تو ان کے لیے آسان ہے. لیکن خوب ہمارے تک کیوں نہیں پہنچتے ہیں؟ کیونکہ ہماری پریزنٹیشن ویک ہے. پریزنٹیشن ہمارے پاس کانٹینٹ اہل بیت کا ہے. اس میں یقین رکھیں کہ جو اہل بیت نے ہم تک پہنچایا ہے اس سے بہترین دنیا میں کہیں نہیں ملنا ہے. جو قرآن نے ہم تک پہنچایا ہے اس سے بہترین دنیا میں کہیں نہیں ملنا ہے. ضرورت اچھے لوگوں کی ہے، اچھے افراد کی ہے، کہ وہ آئیں اہل بیت کی تعلیم کو حاصل کریں، گہرائی میں جا کے سمجھیں. خود شہید مطہری علامہ طباطبائی زمانے کے بنے، انگلش زبان میں بنے، کہ اگلے 10 سال، اگلے 15 سال میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ شہید مطہری جو تھے، گزرے تھے ایران میں، یہ تھے زمانے کا شہید مطہری. یہاں پر انگلینڈ میں رہتا ہے، یہ انگلش زبان بولنے والا ہے. زمانے کا مطہری جو ہے وہ گلاسگو میں رہتا ہے، یا وہ کہیں کہ مثلا ڈینمارک میں رہتا ہے. یعنی وہ انٹلیکچوئل، شیعہ انٹلیکچوئل باتوں کو آ کے دنیا کے سامنے پیش کر سکے. یہ گول رکھیں، یہ ویژن رکھیں. علماء کا رول ہے، انسٹیٹیوشنس کا رول ہے، جماعت کا رول ہے، ہر ایک کا الگ الگ لوگوں کا رول ہے اس کے اندر، کہ مثلا وہ رول دیکھیں اور اپنے رول کو بخوبی ادا کرنے کی کوشش کریں. اور سب سے زیادہ جوانوں کا رول ہے، احساس کریں، گولز ہائی رکھیں کہ مجھے امام کا سپاہی بننا ہے. اور امام کے سپاہی بنوں گا تو جب میں نے یہ ارادہ کیا کہ مجھے امام کا سپاہی بننا ہے، تو یقیناً امام میری مدد
کریں گے. ہم نے صرف گول سیٹنگ یہ نہیں رکھنی کہ ہم نے صبح اٹھ کے نماز ادا کر کے کالج، یونیورسٹی، یا پھر واپس آ کے وہی روزمرہ زندگی معمول، یعنی ہم نے اس سے بڑھ کر کہیں ہائر گول سیٹنگ کرنی ہے.
کچھ لوگوں کو تو یہ ارادہ کرنا پڑے گا، کچھ لوگوں کو، ایک پرسنٹیج. یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم سب اٹھیں اور سب حوضہ چلے جائیں، نہیں، ایک پرسنٹیج. اور وہ پرسنٹیج جو سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے، سب سے زیادہ انٹلیکچوئل ہے، سب سے زیادہ سمجھدار اور باشعور ہے، یعنی یہ طبقے کو دین کی طرف آنا پڑے گا، تاکہ دین کی گہرائی کو سمجھ کر لوگوں تک پہنچایا جا سکے. اگر آپ باشعور اور انٹیلیجنٹ لوگوں کو نہیں بھیجیں گے تو یہ مشکل ہم
اور امام کی غیبت میں ہمیں زیادہ سے زیادہ، جس طرح فقہا بھی اور مراجع کرام بھی اس بات کی طرف بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں، نوجوانوں کے اوپر وہ بہت زیادہ کنسنٹریشن کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیم کی طرف آنا چاہیے اور اپنا تزکیہ نفس کرنا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے جو ذرائع ہیں ان سے نوجوانوں کو صحیح طریقے سے یہ معلومات نہیں دی جاتیں कि नौजवानों को अपनी गोल सेटिंग क्या करनी चाहिए, बजाय इसके कि उनको गोल सेटिंग के बारे में बताया जाए, उनको रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामूलात में फंसा कर रख दिया जाता है और उनको उनका ज़िंदगी का जो सही मकसद है, जिस तरह आपने फरमाया कि अभी तक हमने करबला के और मकसद इमाम हुसैन को अभी तक नहीं समझा, तो उसी तरह नौजवानों को ज़िंदगी का मकसद और जो गोल सेटिंग करनी है उसके मकसद के बारे में मालूम नहीं होता।
जी, ये कोर इश्यूज है। देखें, हम करबलाई हैं, करबलाई के लिए ज़िंदगी और है, मौत और है।
बिल्कुल,
करबलाई के लिए ज़िंदगी इमाम के कदमों में गुजार देना है और मौत यानी मोहब्बत के इमाम की राह में जान चली जाए, ये करबलाई होते हैं कि जिनकी ज़िंदगी भी इमाम के लिए, जिनकी मौत भी इमाम के लिए। इनके ख़ानदान ऐसे होते हैं, जब सर फेंक दिए जाते हैं माँ के पास, तो माँ उस सर को उठा के वापस कर देती है, कहती है जो खुदा की राह में दे देते हैं वो वापस नहीं लिया करते। ये ख़ानदान वाले, ये अहले बैत की मोहब्बत। करबलाई होना, अगर वाकई कौम करबलाई हो गई, इमाम का ज़हूर हो जाना।
बिल्कुल आगा, यहाँ पे जो है हमारे प्रोग्राम का टाइम भी जो है इख्तिताम पसीर हो जाता है, तो इंशाल्लाह नाज़रीन आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। उम्मीद है कि आज की डिस्कशन भी आपको पसंद ये होगी, हमने इमाम ज़माना के हवाले से गुफ्तगू की, इंतज़ार के और जो मरजईयत के हवाले से है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उससे मुंसलिक होना पड़ेगा, दीनी तालीम हासिल करने के लिए हौज़े की तरफ बढ़ना होगा। इमाम की ग़ैबत के ज़माने में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हौज़े की तरफ बढ़ना चाहिए, ताकि उनमें से इंटेलेक्चुअल लोग पैदा होकर इमाम को, इमाम की कम्यूनिटी को सर्व कर सकें। इंशाल्लाह नाज़रीन, नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।